Hi Atul, thank you so much for joining us on Blitz Business. It's such a pleasure to have you.
Thanks Ashish, thanks for having me on the show.
Awesome. Atul, tell us a little bit about yourself first. Then we'll dive deeper into multiple aspects.
Okay, so through education, I'm a mechanical engineer. I graduated from ITDLE in 2009 and started my career as an investment banker. I worked with Credit Suisse, mostly in Asia, in Hong Kong, in Singapore, in financial institutions group. Worked there for around 6-7 years, then came back to India and in 2015 to work in the Indian startup ecosystem. Startup ecosystem was fairly matured in India by that time. So started working in Indian fintech space. Initially worked with a company called Rubik, where I was leading their business development efforts. Then worked with Paisa Bazaar for a bit. And in 2020, started Basic, and it's been now around 4 years that we're building Basic and trying to increase the penetration of mortgages in India.
Understood. So first is, how did the name Basic came? A lot of thought process, or you were like, ab mil nahi raha, kuch just put it Basic.
Something like that. So, in 2020, we realized that there is a huge problem of housing in India. And actually, the problem was on our TV screens. If you see, people were migrating from cities to their native places. So we wanted to do something in mortgages. We got some funding, our seed funding of 500K USD from Pickers Capital. And now the funding was there, idea was there. In fact, team was also ready. And we had to, it took us a lot of iterations to come to a company name, and nothing was getting figured out. So we just thought that, okay, we have an agent-driven business. So let's aim for an English word. Which everyone can use. So Basic is something which people can speak. And again, home is something which is basic to everyone. So, and it's something unique. So we said, okay, let's call it Basic Home Loan. And it will also give a feel of that we are into affordable housing, that we are doing it for basic kind of houses, not fancy houses. So that's how the name came into being. There was no thought process behind it. It was more like that we have to now finalize something, and that's how we put the name there.
तो कोई आप पे फैंसी लोन भी आएगा वो आप नहीं दोगे फैंसी घर किसी को.
सी आइडिया इज कि इन इंडिया मॉर्गेज पेनिट्रेशन इज वेरी लो एंड स्पेशली इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो जो फैंसी घर अगर आप जो बोल रहे हैं उसके लिए बहुत ऑप्शंस है कस्टमर के पास. पीपल गेट प्री अप्रूवल्स इन देयर बैंक अकाउंट्स एंड एवरीथिंग ऑलरेडी डन. बट इन अफोर्डेबल देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. पीपल हैव कैश इनकम्स, पीपल डोंट हैव डॉक्यूमेंटेशन, एंड इट्स अ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन काइंड ऑफ प्ले वेयर यू कैन नॉट हैव कंप्लीटली डिजिटल जर्नीज. सो दैट इज समथिंग वेयर वो होता है ना, जहां बसड़ है वहीं बरकत है. तो वहां सबसे ज्यादा बजट है, तो वहीं पे आप कुछ बना सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी फोकस मोर ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग.
ओके, ऑसम. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेगमेंट, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द चैलेंजेस. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड अतुल, व्हाट इज अ टिपिकल टिकट साइज समवन कम्स टू यू और इन दिस सेगमेंट इन जनरल, व्हाट आर पीपल लुकिंग फॉर, लाइक एक्स अमाउंट ऑफ लोन एट एक्स परसेंटेज. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, लाइक व्हाट डू दे स्ट्रगल विद, एंड देन विल go ahead.
See, in a typical kind of a home loan, people generally are more sensitive to ROIs and EMIs, what will be the cash outflow. But in affordable, the mentality is different, because since as the ticket size is smaller, so 1% here and there will not change a lot of things for the customer. I think the EMI will remain in the same age, but the major thing is how much loan you can get, because that person don't have enough money to put their own contribution. So suppose wo 20 lakh ka ghar le raha hai, bande ke paas 2 lakh rupees hain, and he will need 18 lakh rupees. So eligibility or the loan amount becomes a very big problem or the major issue. So that's something which people want. Secondly, the thing is, aaj ki date mein, there are not many options for the customers. There are so many banks and housing finance companies, but they are not like present everywhere. So what happens is, to get the right offer for the customer is a problem. And then if you see how these banks and HFCs operate, if you go to them, first they will ask a login fee from you, which is like a initial money deposit. When you go to these HFCs or banks, they will ask for a initial money deposit of anywhere around 3,000, 5,000, 10,000 rupees. And then only they will tell you their offer, that whether they can do the loan or not. Now, for a low income household, it's not humanly possible, and it is also not financially wise to pay to 10 banks or HFCs and then discover the offer and then do comparison on their own. So they need some handholding. And again, in loans, subjectivity is very high, especially in home loans, and it's going to stay with you for next 10, 15 years. So people want to be very sure. So it's not something which people will buy directly online. Means they need some intermediary who can handhold them. Plus there is, you know, issues of documentation, offline mortgage evaluation. So a lot of things are there. So which a person who is not familiar with the loan process will find very difficult to do on their own. So those are the things we are solving for the customer.
Understood. So typically,
and by the way, we don't charge anything to our customers. We don't charge anything to our customers. So our services are totally free for them. So that's why they, you know, they, when they get to know about us, they come to us.
And what is a typical interest rate?
So it can be anywhere based on customer profile, ranging from 9% to up to, you know, 18-17%. Now there are few HFCs who even charge into 20-22%. But for that, we have created our own lending product where we are lending in in partnership with few banks, and we are doing the same kind of loans at 14.
Understood. And where does someone find a 20 lakh home?
Yeah, there are places. Means if you go to tier 2, tier 3 cities, in fact, zyada dur kya jana, even if you go to say the Dwarka Expressway, wahan pe one RK type ki jo constructions aa rahi hai, you will get a 25 lakh rupee decent apartment over there.
Really? So your category, Atul, is only for home loan, or do you plan to expand into other category also?
See, as of now, we want to go deeper into home loans. The idea is that it's such a big market. Last year, about $175 billion of new home loans have been done. And I'm not counting refinancing. I'm not counting loan against property in this. And in next 4 to 5 years, it is expected that the market will be at $300 billion. So that's how the mortgages are growing in India. So, you know, you've seen this way. It's a low penetrated market. In India, mortgage to GDP ratio is just 10-11%. In US, UK, it's around 65%. So there is a lot of scope. So it's a less penetrated market, but a huge market. And I believe that the current incumbent players are not sufficient to meet the demand or to handle the demand properly. So this is a big opportunity to disruption, that you have a big underpenetrated market and there are no working solutions. So I believe home loan itself is a big opportunity. And if we do it right, we can make a big company out of it.
Since you're in this, from this segment, Atul, and there are these news which keeps coming, DLF launched something, 100 crore mein big gaya, 2 din mein, 1 din mein. What's all that buzz? What's happening?
See, obviously, baat hai ki DLF make quality homes, but they are not my customer. Means, as in their customers are not our customers. We are more into affordable. But if you see Signature Global launch karta hai, tab bhi aise bik jata hai. They are into affordable. So every segment, every market have, you know, best players and the worst players. So DLF is good in luxury segment. Then there is Signature. Then there are various other builders who are good in affordable segment. So we focus more on such kind of loans, which are in affordable housing space.
Understood. And so what is, and how do you, so you tie up with NBFC or you have your own balance sheet? How does it work?
So when we started, we thought that what's the problem? The problem, why people don't have houses. Means, in fact, if you see, there are so many slums in India, and India is actually, India is the highest homeless population in the world, by the way, that's a fact. And we thought that what's the problem? The problem is not the availability of land. We are the seventh largest country in the world. And the problem is not the availability of money. There are about 110, 120 housing finance companies in India. They're sitting with capital and everyone wants to lend. They're looking for customers. It's not like that their capital is all deployed. The problem is the distribution, that how the customer finds the lender or how the lender finds the customer. So we started with distribution first. And in our first 2.5-3 years of the journey, we set up distribution in 30 cities. And again, in home loans, you need an offline leg. So what happens is that in India, we don't have a database of properties. So you cannot evaluate the asset digitally. You have to do it offline. So you need a ground presence. So that's why our model is phygital. And we set up this distribution. We partnered with about 75 banks through digital integrations, through, you know, automations, that how we can provide the loans digitally to our customers. Then in the mid of last year, we have started entering into risk sharing arrangements with the bank. So now we have 5 such products on our platform where we are taking risk and we are doing the credit. And the idea was that if you see the traditional housing finance companies in India, their cost to income ratios are very high because they operate through branches. And the drawback of branches is that they build branches in those areas where you already have the demand, because otherwise branch ki profitability nahi aayegi. And isse penetration increase nahi hota hai India ka. And secondly, kyunki branch cost fixed cost hai, so they have to charge higher to the customer. So we found out that HFC's ka cost to income ratios around 70-80, whereas if you see the actual variable costs are not that high to the loan. So humne kya kiya ki ye jo products banaye hain, these are the same products which other HFCs are doing at 18-20%. We are doing it at 14-15% because our cost to income ratio is low. Our cost to income ratio is 35-40%, and that is only because of the fact that our model is branchless. We have agents who use my mobile app to do the loan. So our agent plus mobile app is the complete branch for the customer. That's what the differentiation we have created. And now this agent can be anywhere in India. So we can increase the penetration also. Even in small cities, we can do the loan.
Let's touch a little bit about on the consumer aspect. So Atul, according to the loans you have been giving or the data you have, what are the top three affordable home locations?
In India, see, I am present in 30 cities. Out of that, I can tell you what are the good locations, because there are other locations also which must be good, but we have not expanded there yet. If you see, affordable housing projects are coming everywhere, especially builders are also finding it good to build in tier 2, tier 3 cities, because now you have good infrastructure over there, you have communication and transportation channels over there, and wahan pe turnaround bhi jaldi hota hai, ki project jaldi banta hai, cheap labor hai, fatafat bik jayega. Pehle aisa nahi tha, ab because of the advancements, a lot of new projects are coming in tier 2 cities. So mere hisab se, if you go to Jaipur ke aas paas ek wo patta karke jagah hai, Jaipur ke outside mein, you will see a lot of affordable housing projects coming over there. Then even agar aap metros mein bhi dekhenge, Mumbai ke bahar agar aap Virar, Borivali side jayenge, to that is the area where you played, Mira Road, Bhayandar, wahan pe bhar ke affordable ke projects aa rahe hain. Then पुणे मुंबई के बीच में एक पूरा जगह है, चिंचपोकली, ये सब जो आता है वहां पे पूरा अफोर्डेबल का बेल्ट बन रहा है, बिकॉज सिटीज आर एक्सपेंडिंग, यू नो, एंड अगेन पीपल आर मूविंग आउट ऑफ सिटीज, बिकॉज ऑब्वियसली मेजर सिटी में तो महंगा ही मिलेगा घर, बाहर न्यू कंस्ट्रक्शन आ रही है. उसी तरह इफ यू सी सिटीज लाइक वाइजैक, विजयवाड़ा, दे आर हैविंग वेरी गुड प्रोजेक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द टॉप सिटीज आई विल से वेयर अफोर्डेबल हाउसिंग इज ग्रोइंग एंड वेयर वी हैव प्रेजेंस.
And Atul, from consumer perspective, what are the few 2-3 things a consumer should be aware of if he's applying for home loan, either to you or to someone else? Just like, what are the things first time home buyer, for if they're applying for home loan, what do they need to be aware of?
See, first thing is that they should be aware of their credit score. Because many a times, कभी कभी कस्टमर को पता नहीं होता कि कोई अनपेड क्रेडिट कार्ड ड्यू रह गया या कुछ रह गया जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो रखा है. बिकॉज यू नो, कस्टमर की प्रोफाइल के लिए क्रेडिट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपका ROI क्या होगा, आपका लोन टू वैल्यू क्या मिलेगा, वो बहुत जरूरी होता है कि इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड योर स्कोर इज गुड. सेकेंडली, ऑन द प्रॉपर्टी साइड, आई विल से दैट यू नो, इन मॉर्गेजेस द इवेल्युएशन इज नॉट ओनली ऑन द कस्टमर प्रोफाइल बट ऑल्सो ऑन द asset profile. So if you're buying a property, try to buy something which is from a reputed builder or maybe in a good location or locality. The reason is ki agar property acha hoga na, to value bhi acha milega, ROI bhi acha milega, aur bank will also be comfortable in doing loan. HFC nahi, kisi bank se hi loan mil jaye agar ye dono cheeze achhi hain. And then obviously baat hai ki aapko apna ek jo term hoti hai, technical term, FOIR, fixed obligation to income ratio, उसको थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा. इफ यू ऑलरेडी हैव सम अदर लोन्स गोइंग ऑन, तो ट्राई कीजिए उसको, यू रीपे इट अर्लियर, और मे बी यू स्ट्रक्चर इट इन दिस वे दैट यू हैव रूम सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम लोन अमाउंट. एज आई टोल्ड यू दैट इन आर कैटेगरी मैक्सिमम लोन अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पीपल इन लो इनकम हाउस होल्ड डोंट हैव दैट मच सेविंग्स, दे वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा लोन हो जाए. एंड यू नो, इन दिस सेगमेंट में तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे बताना भी नहीं पड़ता. ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनके साथ हमें बात करनी पड़ती है कि आपको महीने का इतना देना. सो दे डोंट नो कि ROI क्या है क्या नहीं है. वो सिंपल बात है कि हाँ भाई कितना देना पड़ेगा, मेरी सैलरी इतनी है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा. सो यू हैव टू कीप दैट हेडरूम कि आपको एक अच्छा लोन अमाउंट मिल सके. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड.
एंड यू वर मेंशनिंग, यू नो, बिल्डर शुड बी गुड. सो हु आर दीज गुड बिल्डर्स? All of us has seen in the past, like, बहुत बदनामी हुई है. So in Delhi,
हुई है, but I guess कि देखिए वो नोएडा साइड में हुआ है एंड वो बहुत सारे प्रोफाइल फंडिंग भी हुए हैं, गलत केसेस भी हुए हैं, बट आई गेस कि अभी रेरा के आने के बाद थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड एंड स्पेशली अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो गुड़गांव साइड अच्छा है, अभी तक वैसा नहीं है गुड़गांव फरीदाबाद साइड एंड नोएडा इज ऑल्सो देर आर गुड बिल्डर्स ओवर देयर, बट आई विल से यू शुड सी द रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिल्डर, यू शुड सी हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड. एंड जनरली देखिए आप अपनी विसिनिटी में जानते ही हैं किस बिल्डर का क्या चल रहा है एंड वेदर यू शुड बाय और नॉट, बट अफोर्डेबल में क्या हो जाता है कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बिल्डर्स हु आर सिंगल टावर काइंड के बिल्डर्स, कि वो एक ही टावर बनाते हैं एंड दे माइट बी न्यू बिल्डर्स, दे माइट हैव नॉट डिलीवर्ड मेनी प्रोजेक्ट्स, सो देयर यू कैन एक्चुअली फर्स्ट गो टू बैंक एंड आप अपने पता है इसमें. अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि जब आप बैंक के पास जाके बोलते हैं ना कि मुझे ये प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, बैंक अपनी तरफ से भी प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल इवेल्यूएशन कराता है, तो बैंक भी आपको बता देता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है कि नहीं. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपके पास पैसा है भी तब भी आप एक बार लोन के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए, 5-10 हज़ार रुपए जाएगा बट एक तरह से आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन हो जाएगी, क्योंकि बैंक विल यूज प्रोफेशनल्स एंड दे विल गिव यू कंप्लीट इन एंड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कि बिल्डर का यू नो हिस्ट्री क्या चल रहा है, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाए.
सो यू मेंशन अतुल रेरा, सो अगर आप फॉर आवर लिसनर्स मेनी विल नॉट बी अवेयर ऑफ रेरा, मोस्ट ऑफ अस हैज हर्ड, व्हाट इज रेरा इन सिंपल टर्म्स इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड.
रेरा गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक बिकॉज यही जो बिल्डर्स और इस इंडस्ट्री में थोड़ा गलत प्रैक्टिस हो रही थी, सो रेरा इज अ गवर्नमेंट बॉडी एंड जनरली स्टेट लेवल पे अलग अलग रेराज होते हैं, लाइक there is a different RERA for Delhi, there is a different RERA for Maharashtra. So these are governing bodies because in India, you know, property nuances are very localized. Har city mein alag type ki property agreements, property types hote hain. So RERA helps in, so every builder has to register with RERA and they have to provide their timelines, they have to, you know, get their background verifications done. So if suppose a builder has committed ki aap mere sath construction in plan लीजिए और मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, दे विल हैव टू गिव हार्ड टाइमलाइंस टू द बिल्डर, सॉरी टू द गवर्नमेंट, एंड इन केस दे आर मिसिंग दोस टाइमलाइंस देन गवर्नमेंट हैज ऑल द थ्री मेजर्स मींस एंड दे रिवॉर्ड द बिल्डर ऑल्सो, दे पेनलाइज द बिल्डर ऑल्सो एंड दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. सो अर्लियर पहले जो ये होता था कि देर वॉज नॉट अ यूनिफाइड वॉइस अगेंस्ट यू नो द रियल एस्टेट डेवलपर्स, आज वो रेरा में है कि कंज्यूमर्स कैन गो ओवर देयर एंड दे कैन फाइट अगेंस्ट दैट डेवलपर cumulatively through a government body. So that is something which has come into play.
So you think RERA has helped in real estate?
देखिए पहले से तो बहुत better है. In fact बहुत clarity आ जाती है. And जैसे आज हम अगर कोई customer को property लेनी है और उसको दिखता है builder is not, अब वैसे वो possible ही नहीं है क्योंकि generally सभी RERA register होते हैं. अगर register नहीं है तो एक caution flag हो जाता है. And plus, if you go to RERA website, you will get to know everything about the project, about the builder. So, वो एक बहुत structured way में information सी बात है कि you get those timelines also through from builder in a hard commitment way कि ये होगा. So, you can also plan कि अगर कुछ ups and downs हैं तो you can manage it much effectively.
And Atul, as a player in this segment in real estate, sort of this particular domain, what is your let's say suggestion to government? Things they need to improve or things they should introduce, new things, rules, regulation.
See, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हर बार बजट के सेशन से पहले बोलता हूँ वो ये है कि आपको शायद ये, I don't know whether you know it or not, but आपको पता है construction material पे जैसे सीमेंट पे 28% जीएसटी लगता है. Now, वो जीएसटी हटा देना चाहिए बिकॉज आप सोचिए वो कस्टमर को डायरेक्टली पे करना पड़ रहा है, बिल्डर थोड़ी ना अपनी जेब से पे करेगा. अगर बिल्डर्स का जीएसटी कम कर दिया जाए तो हाउसिंग बहुत कम हो सकता है रेट, 28% सीधा कम हो सकता है अगर सपोज कीजिए जीएसटी जीरो हो जाए. जीरो तो ऑब्वियसली नहीं होगा बट इफ इट कैन बी ब्रॉट डाउन टू 5-10% तो 18% रिडक्शन हो सकती है कॉस्ट में. एंड दैट इज समथिंग विच आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसीडर कि बिल्डिंग मटेरियल्स पे फॉर बिल्डर्स दे शुड बी लो जीएसटी एंड यू नो दे शुड बी गिवन दीस टैक्स बेनिफिट्स सो दैट कस्टमर्स कैन इवेंचुअली अवेल दैट बेनिफिट. सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि इफ यू सी यू नो टैक्स सेविंग जो मिलता है होम लोन पे वो मुझे लगता है कि बहुत अब पुराना हो गया है बिकॉज यू ओनली गेट 1 लाख एंड 2 लाख का जो आपका सेक्शन 10C और जो भी है दैट शुड बी रिवाइज्ड क्योंकि उसके अंदर क्या है कि आज की डेट में उतना प्रिंसिपल और उतना इंटरेस्ट तो शुरू के 3-4 महीने में निकल जाता है कस्टमर का, 5 महीने में मैक्सिमम निकल जाता है. सो इफ देखे गवर्नमेंट कैन यू नो इंक्रीज दोज लिमिट्स, सो कस्टमर विल बी बेनिफिटेड अ लॉट एंड बिल्डर विल ऑल्सो गेट मोर डिमांड. And third thing which, sorry, it was in my top of my mind. Third thing which was, which is very important is, sorry, I forgot something. I had a good point in mind. One was GST, one was this thing, tax and never mind.
It will come back again.
yeah, yeah. As I was speaking, there was one more point. It was an important point, yeah.
It happens. But yeah,
third thing, which I'm especially in affordable segment, I wanted to say is ki aaj ki date mein affordable housing the definition as per Pradhan Mantri Awas Yojana is that in metro where the you know property price is around 40 lakhs, 42 lakhs, uspe jo bhi loan hoga wo affordable housing loan hoga, and there is a lot of good benefits which government provide in terms of interest subsidy, in terms of you know your principal discounts or subsidies. So idea is ki wo definition ko bhi revise kar dena chahiye. Because आज अगर आप मेट्रोस में देखें तो 40 lakhs is too low. It should actually be revised to around 70-75 lakhs so that more people can avail the benefits of PMAY Yojana.
So what is PM Pradhan Mantri Awas Yojana? What is the benefit someone gets out of it?
So a lot of benefits. See, first thing is that if you are eligible for that PMAY, the especially if you are in economically weaker sections, there it applies more. So what happens is that there is a fixed set of properties which you can buy. Means ek area itna hona chahiye, women ownership honi chahiye. If you qualify that, then aapka rate of interest bahut kam ho jata hai. Thoda bahut achha effect hota hai that government will pay some amount of interest to the bank. And secondly, उसके अंदर आपको कुछ principal reduction में मिलता है that there is a subsidy from the government side. So eventually जो rate of interest आप मान लीजिए 10-11% पे जाना था, वो इवेंचुअली आपको 7-8% पे आ जाता है. तो विच इज अ गुड सेविंग फॉर द कस्टमर. एंड बैंक्स को भी एक बेनिफिट मिलता है कि बैंक्स का एक इनकम मतलब सिक्योर हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट से आनी है. इवन इन देयर इज अ एनपीए तो एटलीस्ट वो रेजिडुअल वैल्यू जो बैंक सॉरी गवर्नमेंट से आनी है वो आएगी. ऑब्वियसली देर आर सम चैलेंजेस ओवर देयर ऑल्सो कि अब गवर्नमेंट बॉडीज पे थोड़ा सा होता है कि टाइम पे पैसा नहीं आता, बट एज ऑन अ concept basis is a very good scheme. And so they have one component like credit link subsidy scheme under which you get these benefits. Then there are other benefits also like Pradhan Mantri Awas Yojana rural also include this you know toilet financing kind of program. So gaon mein agar logo ko toilets wagera banane hai, so you get this helps the customer in building you know keeping the surroundings clean and all. So then there are many other housing related benefits which you get in that both tangible and intangible. In terms of monetary and non-monetary benefits, which help you to have homeownership in a good way. And this is something which government have been pursuing from a very long time. Means, I think Modi ji to hamesha hi bolte rehte housing for all, Pradhan Mantri Awas Yojana. And kyunki isse pehle jo tha na, wo tha Indira Awas Yojana karke ek chalti thi. And wo itna successful hua nahi tha. But when PM Modi came into power in 2013, so tab unhone rebrand karke ek Pradhan Mantri Awas Yojana banaya. And wo कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है. पीपल हैव गॉट बेनिफिट्स.
सिंस यू मेंशन अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम?
अच्छा ये देखो पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, देखिए इलेक्शन का सीजन है तो यू नेवर नो वेयर इट विल लैंड. तो पॉलिटिक्स में तो नहीं जाते ऑब्वियसली. तो पिछले कुछ साल से अच्छा तो हो ही रहा है देश में.
एनी अदर कमेंट या बस इतना ही?
देखिए बिजनेस तक ही रखते हैं, देखिए दैट्स समथिंग.
ओके let's come back to then real estate. So in real estate, Atul, there are many, we keep hearing, you know, if someone buys a property, there is a cash component involved. What is the current scenario? How can it be avoided? Or now all the transactions are non-cash? So help us understand.
Obviously, government nahi prefer karti. But log gharte hai, chalta hai market mein. The reason is, you cannot stop it. But wohi baat hai ki, agar aap प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रॉपर वैल्यू पे नहीं कराएंगे बिकॉज यू द कंपोनेंट यू गिव इन कैश, यू डोंट इंक्लूड दैट इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कल को आपको भी रिस्क हो सकता है. ठीक है, वो मार्केट में आपको भी पता है इंडिया में दो खाते चलते हैं, एक दिखाने के लिए और एक करने के लिए. तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, पेपर पे क्या है, वो अलग होता है. पूछ रहे थे ना, एक सजेशन और आती है. इंडिया में ना रजिस्ट्रेशन की रेट भी बहुत हाई है, अराउंड 8% तक जाता है. इफ यू आर बाइंग एज अ यू नो मेल, इफ देयर इज अ वुमेन ओनरशिप तो 7-6% तक आ जाता है. तो प्रॉब्लम इज पीपल अवॉइड रजिस्ट्रीज, पीपल डोंट वांट टू डू रजिस्ट्री या कम रजिस्ट्री करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कैश आउटफ्लो. इवन इफ इट्स अ 20 लाख रुपी होम यू आर बाइंग एंड यू आर डूइंग अ रजिस्ट्री, तो for any person. So people want to show the value as 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs. So it is more ki agar government thoda sa is rate of interest ko jaise kam karegi. Jaise aapko ek acha example deta hu, in 2020-21 there was a spike in housing demand, especially in Maharashtra. Kyunki circle mein na, un circles mein government has reduced the registry rates from 8% to around I guess 4 or 5%. So people actually came forward to do registries. Registry is very important, you understand. We don't have India mein formal database of property kyun nahi hai? Because people avoid registries. Yeah, there are many other factors also, but this is also one of the factors. And jab tak registry nahi hogi, government ko pata hi nahi chalega ownership kiski hai. How will they create the database? And again, with this registry or with a kind of home loan, it is very important because that puts a piece of land into formal economy. Ki ek you know, random piece of land ke upar ab ek value attached hai, ek legal document attached hai. So that comes into the economy. So ye bahut important ho jata hai if you see from the economics perspective also. Aaj ki date mein if you want to see, aur wo GDP ke andar aa jata hai pura uski value, so that helps in growing the country also. But people avoid that. Aur usko control karne ka, dekhiye wo to wahi baat hai ki how you will control corruption in India, wo to bahut hi bada topic hai, shayad meri kabiliyat bhi nahi hai usko answer karne ki. But idea is ki थोड़ा सा हार्श है 8% रजिस्ट्री अमाउंट, तो पीपल जनरली ट्राई टू अवॉइड इट.
एंड अतुल, वी कीप हियरिंग और एटलीस्ट आई एम हियरिंग एज लेटली, अभी आर वी इन अ रियल एस्टेट बबल और समथिंग?
ऐसा तो नहीं है. देखिए, रियल एस्टेट ग्रो किया है पिछले 2-3 साल में, बिकॉज इफ यू सी लास्ट टू लास्ट वाला जो हमारा बजट था उसमें रीट्स अलाउ कर दिए थे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी व्हिच इज कमिंग टू इंडिया. प्लस ऑब्वियसली सी वी आर अ ग्रोइंग नेशन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो हाउसिंग डिमांड इज ऑलवेज देयर. And in India, people emotionally want to buy houses. मतलब वो rental versus housing का, owning का जितना मर्जी आप debate कर लीजिए, at the end of the day, we are emotional people. We want to have our own house. Means your parents would like to have a small puja room in the house, जो आप एक rental में नहीं बना सकते. आपको अपने room में एक बढ़िया poster वोस्टर लगा के रहने का शौक होगा, जो आप एक rental घर में नहीं कर पाएंगे. तो there is a more of an emotional decision. तो housing demand रहेगी because of, and again, with the changing demographic, people getting more excess income that they have which they can put in savings, so demand is coming. Ab wo bubble hai, kuch had tak to nahi hona chahiye, because actually ab dekhiye na, population kaise increase kar rahi hai, how the cities are expanding, to demand to hai, and we are not able to meet that demand. अब यस, प्राइसिंग का डब हो सकता है कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मेरे को लगता है पिछले कुछ सालों में भागा. लाइक इफ यू सी आई स्टे इन गुड़गांव, तो गुड़गांव का अगर मैं आपको बताऊं, सो आई टॉक टू बैंकर्स एंड दे से कि हमारे लोन पोर्टफोलियो सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे घर लिया था 2 साल पहले और हमने लोन किया था, आज उसकी वैल्यू डबल हो गई है. तो मेरा लोन टू वैल्यू जो हमने 70-80% दिया था, दैट इज ड्रॉप टू 30-40%. So we are offering top-up loans to customer. Ki personal loan lena ho to isi pe top-up le lena. You will get a better ROI. So ye mere ko aisa lagta hai ki pricing ka to hai thoda sa ki pichle kuch saalon mein bahut bada hai. And how, whether these prices will sustain or not, we'll have to see. But demand is there. Definitely the demand is there. Especially tier 2, tier 3 cities mein to bahut zyada demand aa rahi hai aajkal.
Gaon mein itna bada kyun hai? Ye to I have also heard so many times, like suddenly
Gurgaon mein actually
kya,
yeah, Gurgaon mein actually 10 saal se kuch bhi nahi hua tha. In past 10 years, if you see before 2020, the prices were almost stagnant. And then 2020 mein, during COVID, when the housing demand came, loans were cheaper, to ek saath hi matlab wo ek kya mil gaya, ek stimulus mil gaya, tab se badi ja rahi hai. And in fact, in past 3 years, if you see in Gurgaon, I think it's almost doubled. I bought my house during COVID and its value is doubled. So main ek yardstick to use kari.
Wow. Yeah, that's amazing. And you were talking about this point of rental versus buying. Thoda is pe discuss karte hain. We are emotional people, we know. But technically speaking, emotions ko rakhe side mein, poster and mandir is side. What is the on ground reality? What is better, renting or buying?
Yeah, the reason is ki har cheez, देखिए हर चीज इकोनॉमिक्स नहीं होती. जैसे मैं एग्जांपल में पहले भी किसी को दे चुका हूँ कि अगर मैं इकोनॉमिक्स देखूं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ कीपिंग योर पेरेंट्स इन अ ओल्ड एज इज बेटर फॉर यू. इनफैक्ट उनको सर वहां पे एक अच्छी केयर भी मिलेगी और आपको भी फ्री टाइम मिलेगा और आपका पैसा भी कम लगेगा. बट दैट्स नॉट समथिंग हाउ वर्ल्ड वर्क्स. यू हैव टू टेक सम रैशनल डिसीजंस आल्सो, एंड दैट रैशनलिटी माइट बी एक्सपेंसिव. एंड देखिए, वी आर नॉट लाइक यूएस कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है. आप समझ रहे हैं कि कल को अगर आपके पास आपकी जॉब चली गई तो रेंट का पैसा देने के लिए होगा. सो इंडिया में रोटी कपड़ा मकान हर इंसान चाहता है मेरा अपना हो, ताकि मैं देखिए सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि कुछ हद तक वी आर नॉट लाइक वेस्ट. आज की डेट में अगर आपकी जॉब नहीं चल रही होगी नो वन विल हेल्प यू. सो ये तीन चीजें एवरीवन वांट्स टू ओन. मैं रह रहा हूँ, मेरे ऊपर बोले आई हैव अ प्लेस टू स्टे. एंड सी हाउसिंग इज समथिंग विच नॉट ओनली इम्पैक्ट्स यू, इट इम्पैक्ट्स योर फैमिली ऑल्सो. कि एक बारी को ठीक है खुद को ना हो, बट एटलीस्ट फैमिली शुड बी देयर इन अ प्रॉपर प्लेस. फूड सिक्योरिटी शुड बी देयर एंड यू नो एंड क्लोथिंग, दीज आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग. तो वहां पे इन अ कंट्री लाइक इंडिया ओनरशिप इज इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स बनाएंगे तो रेंटिंग अच्छा आ जाएगा, बट सी द अदर सिनेरियोज ऑल्सो. कल को अगर जॉब चली गई तो क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू मनी की रेंट देते रहो. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है.
Understood. तो देन अतुल अगर आप होम लोन नहीं दे रहे होते तो आप क्या कर रहे होते?
यूट्यूबर बन जाता सर. आई थिंक इट्स अ टफ प्रोफेशन, कैन मजाक कर रहा हूँ मैं. मतलब अगर होम लोन नहीं दे रहा होता सर तो मैं वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब कर रहा होता. दैट इज समथिंग आई लाइक आई एंजॉयड. बट आई गॉट अ वेरी गुड टिप इन एक्चुअली 2011. आई वॉज इन हॉन्गकॉन्ग. आई यूज टू वर्क विद अ लॉट ऑफ चाइनीज क्लाइंट्स एट दैट टाइम, बिकॉज उस समय ना सारे चाइनीज स्टार्टअप्स के आईपीओ हो रहे थे. तो आज 2011 में हो रहा है ना, इंडिया में 10 साल बाद हो रहा हूँ. सो इंडिया इज नाउ द हब फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एंड लकीली 2021 में ही इंडिया के पहले स्टार्टअप का आईपीओ हुआ था. आई गेस जोमेटो मतलब एक बैच निकला था जो आईपीओ का. सो दैट वॉज अ राइट टिप. एंड प्लस थोड़ा फैमिली में भी था. माय ब्रदर स्टार्टेड फ्यू कंपनीज, ही वाज एबल टू सक्सेसफुली यू नो सेल देम. माय कजन, अगर आपने एक जयपुर नाम की कंपनी का नाम सुनाया तो ही वाज द ओनर ऑफ दैट कंपनी. सो फैमिली में भी देखा एंटरप्रेन्योरशिप इज वर्किंग. तो सोचा खुद भी ट्राई करते हैं. एंड या इन 2015 केम टू इंडिया कि ठीक है यार अब ट्राई करते हैं. इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड अभी चल रहा है. बट अगर नहीं, अगर यहाँ नहीं होता तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग.
यूट्यूब में सीरियस नहीं थे मतलब?
बिजनेस इज डिफरेंट एंड क्रिएटिव थिंग. आई मीन आई थिंक क्रिएटिविटी इज नॉट यूनिवर्सल, तो वो एक अलग ही एलिमेंट है.
वंडरफुल. तो अतुल अब आते हैं लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस पे. तो व्हाट इज योर नाउ प्लान इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स? यू वांट टू इंक्रीज लोन डिस्पर्सल? आपको और कुछ कैटेगरी में आना है? लाइक व्हाट्स योर मेजर माइलस्टोन यू आर आइंग नाउ?
सी फर्स्ट हमने जो अपना लेंडिंग स्टार्ट किया इन रिस्क शेयरिंग, वी वांट टू इन नेक्स्ट कपल ऑफ इन 6 to 9 months टाइम फ्रेम वी वांट टू टेक लाइसेंस एंड डू को-लेंडिंग. कि अपने लोन्स को और अच्छा बनाए, डिजिटल बनाए एंड रीच बढ़ाए. We are currently in 30 cities. We want to go into 100 cities and then even have plans ki if we can enter into real estate sales also. The idea is 30% of our customers are those who first take a home loan, sanction lete and then they are looking for property. So we believe that we can sell property to them. So those are plans hain. But major, agar aap dekhenge to woh ye hai ki apni lending ko badhana hai. And secondly, we have to reach 100 cities in next 15 to 20 months, maximum 24 months.
Awesome. It was great to have you, Atul. Anything you want to share from your side, which I may have missed or something?
I think we covered a lot of things. I'm okay.
Awesome. Thanks a ton, Atul, for your time. It was such a pleasure. Thoda samajh gaya real estate segment mein kya ho raha hai.
Hopefully, you know, I was able to help. I'm also learning. And this is a very huge industry, especially in India kind of scenario. जहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत localized nuances हैं. एक चीज जैसे at closing just want to add कि अगर आप देखें दिल्ली का सबसे बड़ा builder या North India का DLF, South में है ही नहीं. South के सबसे बड़े builder Brigade, Embassy, North में नहीं है. मुंबई में जो सबसे They are not even present, you know, in South or North. तो बहुत local industry है और बहुत बड़ी local industries है कि एक छोटी industry में भी, एक छोटे area में भी you can make big companies in that area. तो सीखना बहुत है इस industry.
Awesome. We wish you all the best, Atul. Thank you so much.
Thank you.
Time.